व्यक्ति पचासी का पैकेट लाए, रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन झूला नहीं दिया, आज हंसी कल रोला नहीं दिया। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और उसका अर्थ भी समझा। क्या अर्थ समझा? बच्चा जब पैदा होता है तो सत्व प्रधान स्टेज में होता है, और जिन जिन बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सत्व प्रधान से सत्व सामान्य से रजो फिर तामसी स्टेज पकड़ता है। तो यहाँ भी बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं। शुरू शुरू में जब ज्ञान में आते हैं या बाप के बनते हैं तो सात्विक स्टेज होती है, स्वाहा हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे संग का रंग लगता है और सुख देने की बजाय दुख देते हैं। तो बच्चों ने इस गीत का अर्थ सुना, बचपन के दिन भुला न दे। इसके बचपन के दिन बच्चे जब पैदा हुए तो बचपन हुआ, तो ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। माता पिता तुम बच्चों के सामने जानते हैं कि उनकी मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। क्योंकि बाप है नई विश्व का रचयिता, इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो। और विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे, ये जो पुरानी विश्व है वो तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं। सब जैसे सागर में गोते खाते रहते, रावण की जंजीरों में दुखी होकर के सबको मरना, कौन गोते खाते रहते हैं? विनाश होने वाली दुनिया कौन सी है? पुरानी दुनिया, वो रावण की जंजीरों में दुखी हो रहे, अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। सबको नहीं, तो बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा ही पाना, वो हमको राजयोग सिखलाते। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर पक बनूंगा, और बैरिस्टर बनाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण अथवा उसकी डिनेस्टी का वर्षा देने आया हूँ, उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत, माया भुलाएगी, परमपिता परमात्मा से बेमुख करेगी, उनका धंधा ही है। जो उदाहरण देते हैं तो उसकी जरूरत होगी ना, उदाहरण तो ढेर देते हैं। बैरिस्टर का ही थोड़े देते हैं, धोबी का भी देते हैं, डॉक्टर का भी देते हैं। तो माया का धंधा है भुलाना, बेमुख करना। किसको भुलाना? परमात्मा बाप को भुलाना और उसे बेमुख करना। जब से उनका राज्य हुआ है तब से बेमुख कर दिया है। किसका राज्य? माया का राज्य। प्रजा अपने राजा को तो जानती है ना? कि नहीं जानती? जानती। तो माया के राज्य में जो चलने वाले हैं वो माया को तो जानते होंगे ना? कि नहीं जानते होंगे? और माया का राज्य कब होता है? द्वापर कलयुग में। वहां कोई माया रावण को पहचानता है? राम और रावण कहाँ प्रत्यक्ष होते हैं? संगम युग में। तो बाबा को मुरली में पहले से बताई दिया कि माया को बेटी कहते हैं, उसका धंधा सौंपा हुआ है बाप ने। क्या धंधा सौंपा हुआ है? जो बच्चे श्रीमत पर न चले उनको तुम खूब फटकाओ। तो माया बेटी को जो धंधा मिला हुआ है वो तो अपना धंधा करती है एक्यूरेट। बच्चों का काम क्या है? कि वो भले बेमुख करे लेकिन बच्चे बाप से बेमुख न हो। तुम बेमुख बनते आए हो, अब कोई काम की नहीं। शकल भल मनुष्य की है परंतु हैं जैसे मेढक। मेढक क्या करता रहता है? ज्ञान की बरसात जब होती है तो मेढक बहुत से निकलते हैं ट्रां ट्रां करने वाले। अंदर में धारणा कुछ भी नहीं है, ट्रां ट्रां बहुत करेंगे, आवाज बहुत करते हैं। बिगर अर्थ ट्रां ट्रां करते रहते हैं। जो कुछ बोलेंगे उसका अर्थ नहीं, जो सुनेंगे उसका भी अर्थ नहीं। जो सुनना चाहिए सुनने में जो टाइम दिया, बोलने में जो टाइम दिया, सुनाने में जो टाइम दिया, तो बिगर अर्थ अगर हम सुनते रहें, सुनाते रहें, बोलते रहें तो नुकसान होगा या फायदा होगा? अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बनाए रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। इसमें तकलीफ कोई नहीं है। जो निर्बंधन है उनका तो अहोभाग्य है। क्या कहा? संगम युग में जो निर्बंधन है, बाल बच्चों की पालना का कोई बंधन नहीं, सबसे जाति निर्बंधन कौन होते? सबसे जाति निर्बंधन होते हैं कुमार। लेकिन फिर उनको सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? अब
अपने मन का बंधन होता है। फिर नंबर वार निर्बंधन होते हैं, कोई अदर कुमार भी निर्बंधन हो सकते हैं, कोई कुमारियां भी निर्बंधन हो सकती है। माताओं को सबसे जास्ती बंधन, तो जो निर्बंधन है उनका तो अहोभाग्य, वो लौकिक मात पिता तो है विकारों में डालने वाले, और ये मात पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। अगर लौकिक माता पिता सब विकारों में डालने वाले होते हैं क्या है? सब नहीं होते तो बाबा झूठ बोलता है ना है? बाबा झूठ बोल ही नहीं सकता। वो लौकिक माता पिता तो हैं विकार में डालने वाले, और ये माता पिता हैं स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान कराए रहे हैं, आराम से बैठे, हाँ शरीर से काम भी लेना है, वेद के बाप से वर्षा मिल रहा है, और कोई की याद नहीं सता। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बायोस्कोप याद आया, तो याद आएगी जरूर। तुमको तो बात कहते हैं और कोई को याद न करो। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। हर प्रकार की मन रा मन से भी करनी है, तन से भी करनी है, धन से भी करनी है। ये ज्ञान यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए और कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आए तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी पड़ी, यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। तो जो बंधन मुक्त हैं, उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखापति करोड़पति से भी वो महान सौभाग्यशाली हैं। कौन? जो बंधन मुक्त हैं संगम युग में। जो बेहद के बाप से वर्षा लेते, जिसका बंधन टूट गया, उनका भी कहेंगे और सौभाग्य। और जो है ही बंधन मुक्त, वो तो है ही सौभाग्यशाली। जिनमें मोह जाता है, अगर उनका शरीर छूटा, बंधन मुक्त हुए, तो भी अहो सौभाग्य। बंधन मुक्त बन अगर बाबा से पूरा वर्षा कोई लेवे तो कितनी तकदीर खुल जाएगी। बाहर तो रौरव नरक है, बाहर कहाँ है? विदेशों में। हाँ विदेशों में भी, और भारत में तो है ही, लेकिन बाहर और अंदर का मतलब क्या हुआ? है ब्राह्मण अधिनियम और नहीं कहीं। बाहर और अंदर का मतलब क्या? अंदर माना, अंदर माना मधुबन, और बाहर माना बाहर की जो भी दुनिया, चाहे 5 करोड़ की दुनिया हो, चाहे ब्राह्मणों की आधार मूर्तों की दुनिया हो, और चाहे बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, लेकिन जहां मधुसूदन बाप नहीं है, वहां सारी दुनिया में रौरव नरक है, जिसमें दुख के बगैर कोई सुख नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ है? मधुबन में है पुरुषोत्तम संगम युग, बाकी सारी दुनिया में कौन सा युग कहेंगे? कलयुग। सिर्फ मधुबन में पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा? क्योंकि जहाँ पुरुषोत्तम संगम योग होगा वहाँ बाप जरूर हाजिर नाजिर होगा। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की समीप बैठ करो, धारण करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना, दूसरों की सर्विस तो बाद में, पहले क्या करना है? ये हीरे जैसा जीवन बनेगा श्रीमत पर, या तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं, कहाँ बाप के घर में सब बच्चे बंधन से छूटे हुए, अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना, सब बंधन से छूटे हुए हों और स्वभाव संस्कार के बंधन में बंधे हुए हों, मन के बंधन से बंधे हुए हों तो छूटे हुए कहेंगे, तो भी छूटे हुए नहीं हुए। अभी तत्व प्रधान बनना है, नहीं तो तमो तत्व प्रधान राज्य में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यज्ञ से तो जो कुछ मिले वो स्वीकार करना, क्या जो कुछ मिले जो कुछ में क्या क्या आता है? खाना पीना बस, दूसरा पीस बाबा अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा जौहरी आए कहां आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे, वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो, बड़ा रॉयल्टी से भोजन खाया जाता है, जो सबको मिलता है वो ही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में तो बड़ी शांति चाहिए, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात, तो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, दोनों बाप दादा, दोनों बाप दादा कौन? एक बाप दादा कौन और दोनों बाप दादा कौन है? तो प्रेम सोल सेवा, और प्रजापिता दादा है। आत्मिक की दृष्टि में भी दादा माना बड़ा भाई और बाप माने बाप, तो आत्माओं के हिसाब से बड़ा भाई कौन हुआ? आत्मा आत्मा भाई भाई सुप्रीम सोल बाप, तो बड़ा भाई कौन हुआ? प्रजापिता हुआ बड़ा भाई आत्मिक, और शिव बाप हुआ बाप, एक बाप दादा तो ये हो गए, और दूसरे बाप दादा क्योंकि बेहद के बाप दो हो गए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, मनुष्य आत्माओं का। तो मनुष्य आत्माओं का बाप वो भी बाप है, और दादा के कौन हुए? जब हम साकार में ब्राह्मण बने तो साकार में भी ब्राह्मणों का बाप भी है, ब्राह्मणों की माँ भी है, और प्रजापिता का सबसे बड़ा बच्चा भी है। कौन? ब्रह्मा। प्रश्न वाली सूल पहला पत्ता, तो उस हिसाब से बड़ा भाई कौन हुआ? ब्रह्मा। तो बाप दादा दूसरे कौन हुए? प्रजापिता और दादा लेखराज, ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल। तो दोनों बाप दादा बैठे, बाप दादा कैसे कहे जाएंगे? कंबाइंड कहे जाएंगे या अलग अलग? कंबाइंड। बाप दादा का पार्ट हमेशा कंबाइंड, माता पिता तो अलग अलग होंगे क्योंकि मेल फीमेल का सवाल है, लेकिन बाप दादा एक ही शरीर में दोनों आत्मा, और दोनों बाप दादा कहा तो एक ही शरीर में कितनी आत्मा हो गई? तीन आत्मा। और हम बच्चे सन्मुख बैठ सुनते हैं, सन्मुख मानो मुख के सामने, अगर आप सर्विस लायक नहीं बने तो फिर कल कल्पांतर पद्धत हो जाएंगे। क्यों? दोनों बाप दादा सन्मुख बैठे हैं और उसके बावजूद भी अगर हम लायक नहीं बने तो कल कल्पांतर के लिए बाधित हाथ से निकल जाएगी। अंधों की लाइफ नहीं बनना, ये महामंत्र सबको देना है, यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है इस युद्ध के मैदान में, तो कहा जाता है मन मना मन। और वर्षे को भी याद करो, ये है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम हो ही, नंबर वार महावीर बने हो, क्या कहा? महावीर ने क्या किया? पहाड़ से संजीवनी बूटी लेकर आया, तो पहाड़ कौन सा है? पुरुषार्थ की ऊंची तेज ही पहाड़ है, उस ऊंची स्टेज में ही मनन चिंतन मंथन चलता है, नीची स्टेज में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। तो नंबर वार महावीर बने, बहुत बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना लें, देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में, जितनी धारणा होगी उतनी औरों को भी कराएंगे। कैसा अपने अंदर अगर धारणा नहीं होगी और दूसरों को सुनाते रहेंगे तो दूसरों का कल्याण नहीं हो सकेगा, अपना भी नहीं होगा। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है, ज्ञानी तू आत्मा भी दो प्रकार के, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें न सुनो और न दूसरों को सुनाओ। नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा, इसका सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी। एक तो को रतन देते रहो। क्या कहा? संसार समाचार की बातें न सुनाए किसी को, मना अखबार न पढ़े न दूसरों को सुनाए, रेडियो न सुने और न दूसरों को सुनाए। टीवी पे समाचार आते हैं देश विदेश के, न सुने दूसरों को न सुनाए, सुनना चाहिए। जीवानंद कहता है कि नहीं सुनना चाहिए, दिगंबर भाई कहते हैं नहीं सुनना चाहिए, वेद में कह रहे हैं, यानी वेद के टीवी के समाचार सुनना चाहिए। इसके लिए बाबा ने बोला है कि लौकिक को अलौकिक में बदल दो। क्या करें? जो भी लौकिक में हम गीत सुनते हैं उन गीतों का अर्थ अलौकिक में बदल दो। अगर बदल सकते हो तो सुनो और सुनाओ, अगर बदल नहीं सकते और फिर भी सुनते हैं और सुनाते हैं तो पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं? अपना नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं? तो नुकसान होगा। तो एक दो को रतन देते रहो। संसार समाचार भी अगर हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उनको ज्ञान रत्नों से, ज्ञान की बातों से, बेहद के ड्रामा से टैली करते रहे। अगर टैली होता है तो दूसरों को सुनाओ, टैली नहीं होता, खुद ही समझ में बात नहीं आती तो दूसरों को सुनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पास रत्नों की झोली, मनुष्य विनाशी धन दान करते हैं और भारत को महादानी कहा जाता है, महादानी किस आधार पर कहा जाता है? भगवान जब भारत में आते हैं तो भारत गरीब होता है या भारत साहूकार होता है? भारत गरीब होता है, फिर महादानी कैसे बनेगा? दूसरों से भीख लेकर के दान करेगा क्या? हाँ, दूसरों से भीख लेने की बात नहीं है, अभी हमारा ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय ज्ञान लेना जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कोई भीख मांगना नहीं है। वो ईश्वरीय ज्ञान लेकर फिर दूसरों को बांटना, यही महादानी बनना। भारत को महादानी कहा जाता है, दूसरे देशों को महादानी नहीं कहा जाता। इस समय बाप बच्चों को दान कर दे, उतना ज्ञान गहराई से समझ ही नहीं सकेंगे। पूर्व जन्मों के संस्कार हैं विविचार के, तो विविचारी बुद्धि जो बनती है अनेक जन्मों में, उस बुद्धि में एक बाप का अविविचारी ज्ञान समाय नहीं सकता, क्योंकि संघ के रंग में आए ना, कहीं क्राइस्ट के संघ के रंग में आए, बाइबल पर भी श्रद्धा बैठ गई, कुरान पर भी श्रद्धा बैठ गई, तो विदेशों में जब संघ का रंग लगा तो दूसरे धर्मों का असर भी पड़ जाता है, आत्मा में वो मिश्रती हो जाती है। कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, अनेकों के साथ संसर्ग संपर्क और संबंध जोड़ा है और वो इस जन्म में ब्राह्मण कुल में आ जावे, ब्राह्मण बन जावे, बाबा का ज्ञान ले लेवे, तो अंजाम क्या होगा? पूर्व जन्मों के संस्कार प्रमाण फिर भी वो कहां चली जाएगी, फिर भी उसी रास्ते को पकड़ लेगी। तो पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है वो सामने आड़े जरूर आता है। तो मनुष्य तो विनाशी धनदान करते हैं और भारत को महादानी कहा जाता है। विनाशी धन भारत के पास है ही नहीं। भारत के पास कौन सा धन है? अविनाशी ज्ञान धन है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं, किसका दान करते हैं? बच्चे। और इस भिखारी है, इस शरीर से जुड़े हुए जो मित्र संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, वो भी सब भिखारी। तो बाबा हम ये सब आपको अर्पण कर देते हैं। बाप फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारी। अब कहते हैं बाप, जब बच्चे कहते हैं ये सब कुछ आपका है, तो बाप कहते हैं ये सब विश्व की बादशाही तुम्हारी है। ये पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, तो जो खत्म होना है खत्म होने से पहले क्या करो? अविनाशी बैंक में डाल दो। खत्म तो होना ही है, तुम डालोगे तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, नहीं डालोगे तो भी क्या होगा? खत्म तो हो ही जाएगा। तो क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले, बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजा ही दे देना। हम यही चाहते हैं और कोई चीज हमको दरकार ही नहीं है। माना हम इस दुनिया की कोई चीज नहीं चाहते हैं, तन मन धन जो कुछ भी है हमारे पास कीचड़ पट्टी वो सब हम देते हैं, लेकिन उसके बदले में इस जन्म में हमें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं है। कब प्राप्ति की इच्छा है? भविष्य की जन्म के लिए। और कोई चीज की हमको दरकार नहीं है। ऐसे कोई न समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। क्या कहा? ऐसी गलतफहमी किसी को न हो जाए कि बाबा को हम सब कुछ दे देंगे तो हम क्या भूख मरेंगे? नहीं, ये तो शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहे। सबका मान जो पैसे वाले हैं वो भी अर्पण होते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं, और जो गरीब हैं वो भी यहाँ अर्पण होते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन इस यज्ञ से शरीर निर्वाह सबका होता है। ऐसे नहीं जो धन दान करते हैं उनका ही अर्पण, उनका ही शरीर निर्वाह होगा, और जो धन दान नहीं करते हैं उनका शरीर निर्वाह नहीं होगा। सबका होता है और होता ही रहेगा। द्रौपदी के डेगरे का मिसाल लिया, क्या हुआ? सिर्फ परीक्षा के लिए थोड़ी कुर्र हुई, लेकिन फूट नहीं पड़ी। तो आप प्रैक्टिकल में वो पार्ट चल रहा है, आज में हुआ तो सब अंत में भी होता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ये भी एक परीक्षा थी कब की। आज की बात बताई कि यज्ञ में ढोढ़ा और बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी और छाछ मिली सिर्फ, जो दमा के मरीज थे उनको भी बोझ दिया गया और कुछ था ही नहीं। तो ये भी एक परीक्षा थी, जिनको डर लगा वो चले गए। क्या डर लगा? कि बाबा तो जौहरी थे, अब इनके हीरे जवाहरात सब फूट गए, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। तो देखने वालों की नजर ने उस समय किसको देखा है? देहधारी को देखा, भगवान को तो नहीं देखा ना। तो जिन्होंने भगवान को नहीं देखा, संशय आ गया, वो तो चले गए। बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की तो बात नहीं हुई, जो साथ चले आए क्या वो भूख मरे नहीं? अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं क्या? जिनको बाजरे की रोटी और छाछ मिलने की नौबत आ गई थी, उनके लिए अब क्या हो रहा है? महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत करके अपना ऊंच पद बनाना है। क्या कहा? भले महल बन रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा रहना है तो क्या करना चाहिए? मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ये नहीं महलों के सुख लेने लगो। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते हैं। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। क्या कैसा पास होना है? ऐसा पास होना है जो मम्मा बाबा का हाथ फेल करें और फटाक से तख्त पर बैठ जाए। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। क्या मतलब हुआ? ऐसा पास होना है कि तुम मरी जाओ, हम बैठे हैं, हमें राजा ही मिले। हाँ, दिल तख्त पर कौन से चढ़ेंगे? जो हार्ट फेल करने वाले होंगे वो दिल तख्त पर चढ़ेंगे? वो तो दिल से उतर गए। जो दिल पर चढ़ेंगे वो ही चढ़ सकेंगे जो बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठे रहे। एक जन्म की बात नहीं, और अभी इस जन्म की बात नहीं है क्या कि यहीं हम हाथ फेल करते हैं और यहीं तख्त पर बैठ जाएं? कौन से जन्म की बात है? भविष्य की जन्म की। अभी 84वें जन्म में हमें क्या करना है? सेवाधारी बनना है। एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं करनी। मुरली लिखना अच्छी सर्विस है, तब खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। क्या बाबा ने जो कुछ बोला एक्यूरेट सारा छप करके हमारे पास लिख करके आ गया? नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं हैं, बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते। क्या कहा? ऐसे वाणी को कट करने वाले क्या बाबा के दिल पर चढ़ेंगे? बाबा के दिल पर ऐसे वाणी को कट करने वाले दिल पर नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ में अंधे होकर जो बात स्वार्थ के लिए लागू होगी वो छाप देंगे, और जो उनके स्वार्थ को पोषण नहीं करेगी उस बात को काट देंगे। होना चाहिए आत्मा के लिए जो बात लाभदायक हो, तो आत्मा के लिए नहीं सोचेंगे। 21 जन्म वाली बात बुद्धि में नहीं रहेगी, रथ की बात बुद्धि में रहेगी कि अगर ये बात मुरली में छपी रही तो हमारे रथ का पोषण नहीं होगा, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। तो स्वार्थ के लिए कट पिट कर देते हैं। बाबा हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है क्या? जो अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न हैं, जो हमको पुरुषार्थ में एडवांस में ले जाने वाले हैं, उन रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम भी अधिकारी हैं, कहे के एडवांस के ज्ञान रत्नों के हम भी अधिकारी हैं, उनके पुरुषार्थ करने के। जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वो हमारे पास आने चाहिए। क्या कहा? जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वो हमारे पास आने चाहिए। इसका मतलब बाबा ने पहले से ही इशारा दे दिया कि यज्ञ में ऐसे भी निकलेंगे बाप के दिल तख्त पर चढ़ने वाले, जो बाप की वाणी को ही काट देंगे अपने स्वार्थ में अंधे होकर। ये कहेंगे भी वही जो अनन्य बच्चे होंगे। क्या कहेंगे? कि बाबा हमारी मुरली कट हो जाती है, हमको मुरली के पूरे वसंत नहीं मिलते। सब इस बात के लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे। कौन कंप्लेंट करेंगे? जो अनन्य बच्चे होंगे वो ही कहेंगे कि बाबा के एक एक वर्तन हमको मिलने चाहिए, मुरली की सेवा भी अच्छी रीति करनी चाहिए। क्या कहा? मुरली माना बाबा के मुख से जो कुछ निकला वो ज्यो का त्यो दूसरों को बांटना चाहिए, सब भाषाएं सीखनी चाहिए। मराठी, गुजराती, जैसे बाबा रहम दिल है, बच्चों को भी रहम दिल बनना है। तो बाबा को पहले मराठी, गुजराती और बंगाली सीखना चाहिए, सब भाषाएं है? हाँ, बाबा हिंदी भी क्यों पढ़ाते हैं? पुरुषार्थ करके जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। जीवन कब बनेगी? जब हम बाप के कार्य में पूरे मददगार बने। बाकी उस दुनिया की जीवन तो बिल्कुल ही फीकी है। किस दुनिया की है? उस दुनिया की माना किस दुनिया की? 500 करोड़ की दुनिया, वो भी उस दुनिया की जो ब्राह्मणों की आधार मूर्तों की दुनिया है, जो जड़े सड़ रही है, उस दुनिया की भी जीवन बिल्कुल ठीक ही है। और बीज रूप आत्माओं की जो एडवांस पार्टी है, उसमें भी जो एक्ट होते जा रहे हैं, बाप को पहचान कर मान कर फिर टूटते चले जा रहे हैं, उनकी जीवन भी, उस दुनिया की भी जीवन भी ठीक ही है। गटर में गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे हमको लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। बाबा रिस्पॉन्सिबल कब हो जाएगा है? जब बाबा की श्रीमत के अनुसार हम सेवा में जुट जाए, चाहे लौकिक सेवा हो और चाहे अलौकिक सेवा हो, अगर बाबा ने डायरेक्शन दिया तो बाबा की जिम्मेवारी। एसलम में दाखिल हुए तो बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। क्या कहा? सब बंधनों से मुक्त कब कर देगा? अगर बाबा की शरण में आए, एसलम में आए। एसलम माना शरण में आना, माना क्या? बाबा की मत पर चले, बाबा जैसे चलाना चाहे वैसे चले। बाकी तो दुनिया में तो गंद लगा पड़ा। ईश्वर सर्वव्यापी कह के गाली दे रहे हैं, कौन है? हाँ, तीन दुनिया है और तीनों दुनिया में बाहर भी है, 500 करोड़ की दुनिया में भी गंद लगा पड़ा वो स्थाई, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, आधार मूर्तों की जो दुनिया है वहां भी दो पार्टीशन। एक तो वो आत्मा है जो विजयमाला में आने वाली, और दूसरी वो आत्माएं हैं आधार मूर्तों में जो विजयमाला में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम वंश में चली जाएंगी, बौद्धि वंश में चली जाएंगी, क्रिश्चियन वंश में चली जाएंगी। कम जन्म लेने वाली होंगी, पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं होंगी। तो जो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, ईश्वर से बेमुख करने वाले हैं, और सर्वव्यापी कौन कहेंगे? जिनको ये पता नहीं होगा कि बाप एक व्यापी बनकर आया हुआ है, बाप किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है, चला नहीं गया, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर उनको पुकारने की क्या दरकार? नजदीक में बैठा है, फिर हे प्रभु कहकर उनके पुकारने की क्या दरकार है? किसी को बुलाया जाता है, कोई दूर होता है तो कहते हैं हे या हो करके बुलाते हैं, या नजदीक वाले को बुलाते हैं, दूर वाले को बुलाया जाता है। तो जिनको जुदाई हो गई हो या दूर चला गया हो, वो तो हे प्रभु, हे भगवान, हे राम ऐसे कहेंगे मुख से, और जिनको मिल गया, जिनके नजदीक बैठा हुआ है, वो ऐसे क्यों कहेंगे? अगर उनको समझाओ ये बातें तो गुरुर गुरुर करने लग पड़ेंगे, गुर्राने लग पड़ेंगे। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कब ऐसे नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं एक मुकर्रर रथ में आया हुआ हूँ। मुकर्रर माना जो आज में भी हो और अंत में भी हो। मैंने तो कब कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बैस शास्त्रों में ग्लानी लिख दी है। क्या कि भगवान पत्थर भित्तर बुद्धियों में भी है, जानवर बुद्धियों में भी है, कच्छ मच्छ अवतार लेकर के आता है, कछुए जैसा पार्ट बजाने वाले उनको ही भगवान समझ के बैठ जाते। कछुए क्या पार्ट बजाता है, है? कछुए की पीठ पे ज्ञान का डंडा पड़े और हाथ पांव सिकोड़ के बैठ जाएगा, कोई जवाब नहीं देगा। तो ऐसे कछुओं को भगवान समझ लेते हैं। मच्छावतार क्या करता है? छोटी मोटी जितनी भी मछलियां हैं उन सबको सबको हक कर जाता है, समझते हैं यही भगवान है जो सबको हक करके पेट में डाल के बैठा हुआ है। तो शास्त्रों में तो उन्होंने ग्लानी लिख दी है, हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि ये कोई ग्लानी है। क्या हम भी मनुष्यों के बनाए हुए ये शास्त्र पढ़ते थे? कौन से शास्त्र? ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र कौन से हैं? ये कागज की मुरली ये क्या हो गई? ये भी शास्त्र हो गई। अगर इसमें कटपिट हुई है तो, क्योंकि शास्त्र भी पहले द्वापर युग में फिर भी शास्त्रित थे, उन्हें सही बात थी क्योंकि सुनाने वाले उस समय सही थे। अब तो न वो सुनाने वाले हैं न उसकी व्याख्या करने वाले हैं, तो भगवान को ही आकर के शास्त्रों का सही अर्थ बताना पड़ता है। तो पहले हम भी ये पढ़ते थे शास्त्र, लेकिन समझते नहीं। अभी तो हमको समझ में आता है कि ये शास्त्रों में ग्लानी भरी पड़ी है, भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। जो कुछ कहो भक्त तो सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी बाहर जाकर के हंगामा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे है? यहाँ बाबा के सामने नहीं बोलेंगे और बाहर जाकर के उलट सुलट बोलने लग पड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं बाबा के सामने तो हमारी बात चलेगी नहीं, सत्य के सामने झूठ तो टिक नहीं सकेगा। तो सामने बोलेंगे मुख से कुछ नहीं, लेकिन अंदर से गुरुर 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 गुरुर, जैसे सागर का बुलबुला बुदबुदा होता है ना, तो सागर में बुदबुदे होते हैं, बुदुर 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 बुदुर, अंदर अंदर बुदबुद चलती रहेगी, संकल्पों का खून होता रहेगा, सामने कुछ नहीं बोले, जब बाहर जाएंगे तो डिस्टर्बेंस करने लग पड़ेंगे, बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चल करके वो दास दासी और नौकर चाकर बने। कौन? जो यहाँ बाप के सामने सच्चार दिल होकर के बाप को नहीं पूछते। अगर सच्चाई है तो बाबा के सामने सच्चे दिल होकर के दिल खोल करके बात करो ना, अंदर की बात अंदर ही रख ली तो जरूर झूठे है। तो ऐसे क्या बनेंगे जाकर के? दास दासी नौकर चाकर बने। बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा कि कौन क्या बनने वाला है, कौन दास दासी बनने वाला है, कौन राजा रानी बनने वाला है, कौन प्रजापद पाने वाला है और कौन चांडाल बनने वाला है। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। क्या फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा? क्या था? अभी तो बाप के सामने भी सर उठा करके बात करने लग पड़ते, कहाँ क्या होगा? यहाँ तो बड़े छोटे का कोई रिगार्ड नहीं, जो दीदी दादी दादा हैं उनके ऊपर भी सवार हो जाते हैं। ऐसी बात ऐसे क्यों? जो बड़े ऊंचे पुरुषार्थी हैं, पहले के पुरुषार्थी हैं, जो हमको ज्ञान में लाने के निमित्त बने, उनको भी क्रॉस करने लग पड़ते, फिर पता चलेगा, फिर नीचे करना पड़ेगा, फिर वो खुशी नहीं रहेगी जो राजा ही फालो राजा ही प्राप्त करने वालों को रहेगी, दिल के अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ? परंतु टू लेट, इस बात में टू लेट। जो पुरुषार्थ करना चाहिए सच्चे दिल पर साहब राजी बनने का, बाप को पूरा पोता मेल देने का, वो तो पुरुषार्थ किया नहीं, टू लेट, बहुत पछताएंगे, होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम ये करते थे, अब अपना हाथ देख लो, कल्प कल्प पछताएंगे, कजनियों को नंबर वार ले जाएंगे ना, किस आधार पर नंबर बनेंगे है क्या? जो जितनी दिल की सच्चाई सफाई से चलेंगे उस सच्चाई सफाई के आधार पर उतने ही वफादार बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, फरमान बरदार बनेंगे, तो वही नंबर आएगा, नंबर वन से लास्ट तक बनेंगे। पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है तो लास्ट में बैठे कौन है, कौन लास्ट में बैठे हैं? अरे बेसिक नॉलेज को ही ले लो, बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जिन्होंने अच्छी तरह नहीं पढ़ी, सच्चार होकर के नहीं पढ़ी, तो जब क्लास ट्रांसफर होगा तो उनका क्लास बाद में ट्रांसफर होगा या पहले ट्रांसफर हो जाएगा? बाद में ट्रांसफर होगा। तो क्लास ट्रांसफर हो गया और बाप ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है तो ऊंची पढ़ाई पढ़ने वालों की लिस्ट में वो आएंगे जिन्होंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, वो लास्ट में आएंगे या पहले आ जाएंगे? लास्ट में आएंगे। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इंसान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तुम भी समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो धूल भी नहीं मिलेगी, जो सर्विस नहीं करेंगे तो डिसर्विस ही करेंगे और डिसर्विस करने वालों को क्या मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगी। भगवान के चरणों की बेअभिमान की धूल भी बड़ी कीमती समझी जाती है, वो भी सर माथे से लगाते हैं, वो धूल भी नहीं मिलेगी। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना चाहिए, मीठे से मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बने। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बना। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी।